بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
زہرا زیدی اور ساتھی ریڈیو تہران کے سبھی شروتاؤں کی سیوا میں سلام پرستت کرتے ہیں۔ شروتاؤں، آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں کی تلاوت اور ان کے انواد سے کریں گے۔ آج کے کارکرم میں آپ سورہ اسراء کی ساتویں، آٹھویں اور نویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سنیں گے قاری سعید توسی سے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا۔ عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات صدق اللہ العلی العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتیان کرپاشیل اور دیاوان ہے، یدی تم کوئی بھلائی کرو گے تو وہ اپنے لیے ہی کرو گے، اور یدی کوئی برائی کرو گے تو وہ بھی اپنے لیے ہی کرو گے۔ تو جب دوسرا وچن پورا ہونے کو آئے گا تو ایک شکتیشالی گٹ آئے گا جس کے لوگ تمہارے چہروں کو برا بنا دیں گے اور مسجد الاقصی میں प्रविष्ट हो जाएंगे, जिस प्रकार से कि वे पहली बार प्रविष्ट हुए थे, और वे जिस वस्तु को भी अपने नियंत्रण में लेंगे उसे बड़ी कठोरता से तबाह कर देंगे। शायद तुम्हारा पालनहार तुम पर दया करे, और यदि तुम पलट आए तो हम भी पलट आएंगे, और हमने नरक को काफिरों के लिए एक कड़ा कारावास बनाया है। निश्चित रूप से यह कुरान सबसे सुदृढ़ राह की ओर मार्गदर्शन करता है, और भले कर्म करने वाले ईमान वालों को ये शुभ सूचना देता है कि उनके लिए बड़ा बदला है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, मैं हूं अहमद अब्बास, मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। हमारा प्रसारण आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9800 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट है parstoday.ir/hi। हमारे फेसबुक पेज का पता है parstoday.hindi। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0098-9035065492। श्रोता, आज रविवार है, दय मास की 3, जमादिस्सानी की 10 और दिसंबर की 24 तारीख। हमारी समय की सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा इस प्रकार है। आप सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार सुनेंगे, जिसके बाद कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाएगा। राजनीतिक चर्चा के बाद साप्ताहिक कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार हम प्रसारित करेंगे, और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा आजकल। तो श्रोताओं, यह है इस समय की सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ क्षणों बाद आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। लीजिए श्रोताओं, अब मरियम मेहरदादी और अहमद अब्बास से सुनिए विश्व समाचार।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। इसराइली मीडिया का कहना है कि नेतन्याहू सरकार ने कैदियों के आदान प्रदान के विषय पर बात करने के लिए अपना अधिकारी काहिरा भेजा है। जिहाद इस्लामी संगठन ने कहा कि फिलिस्तीन की मजलूम जनता का समर्थन केवल ईरान कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारी मारे गए हैं। भारत नियंत्रित कश्मीर में सुरक्षा बलों की कस्टडी में 3 कश्मीरियों की मौत से इलाके में तनाव है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
इसराइली मीडिया ने बताया है कि बिन्यामिन नेतन्याहू की सरकार मजबूर होकर आखिरकार अपना एक बड़ा अधिकारी काहिरा भेज रही है, जो हमास के साथ कैदियों के आदान प्रदान के विषय पर बात कर रहा है। कैदियों के आदान प्रदान के मामले में नेतन्याहू की सरकार पहले कह रही थी कि हमास से कोई बात नहीं होगी, हम सैन्य बल का इस्तेमाल करके कैदियों को रिहा करवाएंगे, मगर इस कोशिश में ज़ायन शासन को कामयाबी तो नहीं मिली। एक बड़ा नुकसान ये उठाना पड़ा कि उसने अपने ही कई कैदियों को मार गिराया। इसराइली मीडिया ने कहा कि कैदियों की रिहाई के मसले पर बातचीत के लिए बड़ा अधिकारी काहिरा गया, जबकि हमास के नेता भी हाल ही में काहिरा का दौरा कर चुके हैं। हमास और इसराइल के बीच वार्ता अप्रत्यक्ष रूप से होती रही है। इसराइली मीडिया ने यह भी बताया है कि अमरीका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ज़ायनी युद्ध मंत्री युवाफ गालांट से कैदियों की रिहाई के विषय पर बातचीत कर चुके हैं। इसराइल के चैनल 12 ने शनिवार को अपनी रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से कहा कि हम हमास के साथ कैदियों के आदान प्रदान के विषय में नए समझौते से पहले प्रतीक्षा के चरण में हैं। ज़ायनी शासन कैदियों के आदान प्रदान का समझौता तब करने की कोशिश कर रहा है कि जब उसे गजा की लड़ाई में भारी नुकसान उठाना पड़ा है।
तेल अवीव में प्रदर्शन करने वालों का कहना है कि उनके परिजनों को स्वतंत्र कराने में नेतन्याहू का मंत्रिमंडल बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। ज़ायनी बंदियों के परिजन ये मानते हैं कि नेतन्याहू का मंत्रिमंडल इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा है। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि उनके परिवार के सदस्यों को गजा से तत्काल वापस लाने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। इससे पहले भी कई बार ज़ायनी बंधकों के परिवार के सदस्य अपने रिश्तेदारों को आज़ाद कराने के लिए प्रदर्शन कर चुके हैं। उनका मानना है कि नेतन्याहू और उसका मंत्रिमंडल इस बारे में सीरियस नहीं है। इसी बीच हमास की सैन्य शाखा इज्जुद्दीन गस्साम ने शनिवार को बताया कि गजा पर ज़ायनी सेना की अंधाधुंध बमबारी में 5 ज़ायनी बंधक मारे गए। हमास पहले भी ऐलान कर चुका है कि बंधकों की आज़ादी की पहली शर्त गजा पर बमबारी का रोका जाना है। याद रहे कि गजा पर पिछले 2 महीनों से अधिक समय से लगातार बमबारी करने के बावजूद अवैध ज़ायनी शासन को अब तक अपना कोई एक लक्ष्य भी हासिल नहीं हो पाया है।
हमास की कैद से रिहा होने वाली इसराइली महिला कैदी के बयान से नेतन्याहू सरकार के लिए एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। तशीन अलमोग गोल्डस्टाइन अपने 3 बच्चों के साथ गजा पट्टी में कैदी के रूप में रही, जिसके बाद उन्हें रिहाई मिली। गोल्डस्टाइन ने बताया कि हमारी सुरक्षा पर तैनात हमास के जवान अपनी जान खतरे में डालकर हमारी रक्षा करते थे। उन्होंने कहा कि कई बार ये स्थिति हुई कि इसराइली हमलों के कारण हमास के उन जवानों की जिंदगी खतरे में पड़ गई जिनके नियंत्रण में हम थे, और उन्होंने जान पर खेलकर हमारी हिफाजत की। अलमोग ने अपनी बेटी के साथ मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमास ने जो पहरेदार हमारे लिए रखे थे उनके लिए हमारी जिंदगियां अहम थी। अलमोग ने कहा कि हमने कई बार उनसे पूछा कि क्या वे हमें कत्ल करने का इरादा रखते हैं, तो उनका जवाब था कि आपके मरने से पहले हम मरेंगे। ये पूछे जाने पर कि कैद में उन्होंने अपना समय कैसे बिताया, अलमोग ने कहा कि मैं अपने बच्चों के साथ खेलती थी और मेरी बेटी उमाग पूरे समय एक्सरसाइज करती रहती थी। अलमोग ने बताया कि हमास के गार्ड ने मेरी बेटी से पंजाबी लड़ाए, लेकिन अपने हाथ पर उसने रुमाल रख लिया क्योंकि वे गैर औरत को छूना दीन के एतबार से हराम समझते हैं। अलमोग ने अपने छोटे बेटों के बारे में बताया कि वे दिन भर ड्राइंग करते रहते थे और दूसरे खेलों में अपने समय गुजारते थे।
ईरान में फिलिस्तीनी संगठन जिहाद इस्लामी के प्रतिनिधि ने गजा पट्टी में फिलिस्तीनी आवाम के खिलाफ ज़ायनी शासन की क्रूर जंग पर पश्चिमी देशों की खामोशी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ईरान अकेले दुनिया के मजलूमों की मदद कर रहा है। नासिर अबू शरीफ ने कार्यक्रम में कहा कि दुनिया के लोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, अमरीका, ज़ायनी शासन और उनके अमानवीय लक्ष्यों की हकीकत जान चुके हैं। उन्होंने कहा कि गजा युद्ध ने मूल्यों और मापदंडों के नाम पर किए जाने वाले ढोंग को बेनकाब कर दिया। नासिर अबू शरीफ ने कहा कि अमरीकी अलग अलग बहानों से दूसरे देशों में अशांति और हंगामे खड़े करते हैं ताकि वहां गृह युद्ध हो जाए, क्योंकि उनकी नज़र में मानवाधिकार का कोई सम्मान ही नहीं है। जिहाद इस्लामी संगठन के प्रतिनिधि ने गजा पट्टी पर ज़ायनी शासन के हमलों में फिलिस्तीनियों की बड़ी संख्या के शहीद और घायल होने का जिक्र करते हुए कहा कि शहीदों में 2/3 से अधिक संख्या महिलाओं और बच्चों की है, फिर भी अमेरिका इन महिलाओं और बच्चों के समर्थन में कोई बयान क्यों नहीं दे रहा है। नासिर अबू शरीफ ने कहा कि अमरीकी मानवाधिकार के नारे लगाते नहीं थकते, मगर फिलिस्तीनियों के कत्लाम पर खामोश रहते हैं। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में ईरान रेजिस्टेंस फोर्स के साथ है।
यमन के सर्वोच्च राजनीतिक परिषद के सदस्य मोहम्मद अली अल होसी ने अमरीका को कड़ी चेतावनी दी। बहुराष्ट्रीय टास्क फोर्स की ओर से यमन की जनता के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही के बारे में अल होसी ने कड़ी चेतावनी दी है। इन्ना की रिपोर्ट के अनुसार अल होसी ने अमरीका को चेतावनी देते हुए कहा कि यमन की जनता के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही की स्थिति में नौसैनिक गठबंधन के जहाजों पर हमले किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी हमले की सूरत में टास्क फोर्स के जहाजों, युद्धपोतों, नेविगेशन और अतिक्रमणकारियों के हितों को लक्ष्य बनाया जाएगा। इससे पहले यमन के अंसारुल्ला आंदोलन के प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुस्सलाम ने भी ज़ायनियों के समर्थन में बनाए गए पश्चिम के बहुराष्ट्रीय टास्क फोर्स को चेतावनी देते हुए कहा था कि लाल सागर के पश्चिमी तट पर मौजूद सैनिक छावनी और पश्चिमी युद्धपोत भी यमन की सेना की कार्यवाही को रोकने में विफल रहे हैं।
गजा युद्ध में हिजबुल्ला के शहीदों की संख्या बढ़कर 122 हो गई है। लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हिजबुल्ला की ओर से घोषणा की गई है कि 7 अक्टूबर से दक्षिणी लेबनान पर अवैध ज़ायनियों के हमलों में शहीद होने वाले हिजबुल्ला के सदस्यों की संख्या अब 122 हो चुकी है। हिजबुल्ला ने शनिवार को ज़ायनियों के हमले में अपने एक अन्य सदस्य के शहीद होने की सूचना दी थी। यह हमला ज़ायनियों ने दक्षिणी लेबनान पर किया था। इससे पहले शुक्रवार को भी हिजबुल्ला ने सूचित किया था कि ज़ायनी सैनिकों के साथ झड़पों में उसके 3 लड़ाके शहीद हो गए। لبنان کے اسلامی پرتیرودھ آندولن کی اور سے گھوشنا کی جا چکی ہے کہ وہ غزہ کے رہنے والے فلسطینیوں کے سمرتھن میں زائنیوں کے ورد اپنے سنگرش کو جاری رکھے گا۔
سنیکت راشٹر سنگھ کے اتہاس میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جب ایک ہی استھان پر اس نے اتنے ادھک کرمچاری اور ادھیکاری کھو دیے۔ راشٹر سنگھ کے مہا سچیو اینٹونیو گوٹیرس کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک زائنیوں کے حملوں میں سنیکت راشٹر سنگھ کے 136 ادھیکاری اور کرمچاری غزہ یدھ میں مارے جا چکے ہیں۔ اپنے ایک بیان میں گوٹیرس نے کہا کہ راشٹر سنگھ کے اتہاس میں پہلی بار دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہمارے 136 ادھیکاری اور کرمچاری کے ایک ہی استھان پر اتنے کم سمے کے اندر مار دیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بہت سے کام کرنے والوں کو ان کے گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا گیا۔ راشٹر سنگھ کے مہا سچیو نے کہا کہ غزہ میں لوگوں کے لیے اپنا جیون داؤں پر لگانے والوں کے پرتی ہم سہانوبھوتی ویکت کرتے ہیں۔ اویدھ زائنی شاسن نے پشچم وشیش کر امریکہ کے کھلے سمرتھن سے غزہ پر حملے آرمبھ کیے جن میں بہت بڑی سنکھیا میں عام فلسطینیوں کی جانیں چلی گئیں۔ 45 دنوں کی لگاتار بمباری کے بعد 20 نومبر کو استھائی یدھ ورام کیا گیا تھا۔ یہ یدھ ورام بھی 1 دسمبر 2023 کو زائنیوں نے حملے کر کے سماپت کر دیا تھا۔
فارس کی کھاڑی میں سے 3 دویپ اسلامی گنتنتر ایران کا اکھنڈ بھاگ ہیں جن پر کسی بھی پرکار کا دعویٰ سویکاریہ نہیں ہے۔ فارس نیوز کے انوسار ایران کے 3 دویپوں کے بارے میں موروکو کی بیٹھک کے گھوشنا پتر میں درج نرادھار دعوے کا روس کی اور سے سمرتھن کیے جانے پر اس دیش کے پربھاری راجدوت کو تہران میں ودیش منترالے میں طلب کیا گیا۔ موروکو میں عرب روسی سہیوگ سنگھ کی 6ویں بیٹھک کے بعد اس سنگھ کی اور سے جاری بیان کے ایک بھاگ میں ایران کے 3 دویپوں کے بارے میں نرادھار دعویٰ پیش کیا گیا۔ اسی سمن میں تہران میں روس کے راجدوت کی انوپستھتی میں وہاں کے پربھاری راجدوت کو شنیوار کو ودیش منترالے میں طلب کر کے ان کو ایران کی آپتی سے اوگت کروایا گیا۔
اسلامی گنراج ایران اور افغانستان نے سہمتی کی ہے کہ افغان شرارتیوں کی سمسیا حل کرنے کے لیے میکانزم کو لاگو کیا جائے گا۔ افغانستان کے معاملوں میں ایران کے راشٹرپتی کے وشیش دوت حسن کاظمی قمی نے افغانستان کی طالبان سرکار میں ودیش منترالے کے پربھاری امیر خان متقی سے ملاقات میں اس وشے پر وستار سے بات کی۔ افغانستان پر ایک انتراشٹریہ سمیلن میں بھاگ لینے کے لیے امیر خان متقی تہران آئے ہیں اور انہوں نے حسن کاظمی قومی سے ملاقات کی۔ ایرنا کی رپورٹ کے انوسار اس ملاقات میں دونوں پکشوں نے کھیتری سمپرک کمیٹی کے وشے پر بھی بات کی جس کا ایران نے ہمیشہ سمرتھن کیا ہے۔ ملاقات میں ویاپارک رشتوں، ٹرانزٹ کوریڈور، ارجا لین دین تتھا دوسرے کھیتروں کے بارے میں بھی وستار سے بات ہوئی۔
بھارت نیانترت کشمیر سے ایک چنتا جنک خبر ملی ہے کہ پولیس کسٹڈی میں 3 کشمیریوں کی جان چلی گئی۔ بھارتی میڈیا کے انوسار کشمیر کے پونچھ ضلع میں شکروار کو پوچھ تاچھ کے لیے لے جائے گئے 8 لوگوں میں سے 3 کی موت کے بعد اب علاقے میں تناؤ بڑھ گیا ہے۔ گروار کو پونچھ ضلع میں سینا کے 2 واہنوں پر گھات لگا کر حملہ ہوا جس میں 4 سینکوں کی موت ہو گئی تھی اور 2 لوگ گھائل ہوئے تھے۔ اسی حملے کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کے لیے شکروار شام کو سرکشا بل 8 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ دا انڈین ایکسپریس میں چھپی ایک خبر کے انوسار ان 8 لوگوں میں سے 3 لوگوں کی موت ٹوپا پیر علاقے میں رات کو ہو گئی تھی جس کے بعد علاقے میں تناؤ ہے۔ ان 3 کا انتم سنسکار پونچھ کے بوفلیاز اور راجوری کے ڈیرا کی گلی اور تھانہ منڈی علاقے میں ہوئی جہاں پہلے سے موبائل انٹرنیٹ پر پابندی لگا دی گئی تھی اور سرکشا ویوستھا کڑی کر دی گئی تھی۔ جموں کشمیر پرشاسن نے موت کے کارنوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے لیکن اس معاملے میں قانونی کارروائی کا آشواسن دیا ہے۔ ساتھ ہی 3 مرتکوں کے پریجنوں کے لیے معاوضے کی گھوشنا کی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے سماچار سماپت ہوئے۔
یہ تہران ہے اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
श्रोताओं, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। तीन यूरोपीय देशों के निकलने से अमेरिका के नेतृत्व वाला गठबंधन अब टूटता दिखाई दे रहा है। तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुद्दकी की तेहरान यात्रा, तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शामिल करने के इस्लामी गणतंत्र ईरान के प्रयासों को दर्शाती है कि ये ग्रुप इस्लामी जगत से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त कर सके। उत्तरी कश्मीर के बारामूला क्षेत्र में अज्ञात बंदूकधारियों ने एक पूर्व पुलिस एसपी पर गोलियों की बौछार कर दी, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई।
कोई शक नहीं है और इसमें पॉलिटिक्स नहीं देखना चाहिए।
ये थे हमारी आज की चर्चा के विषय। तीन यूरोपीय देशों के निकलने से अमेरिका के नेतृत्व वाला गठबंधन अब टूटता दिखाई दे रहा है। लाल सागर से अवैध जाने शासन की ओर जाने वाले जहाजों को यमनियों के हमलों से सुरक्षित रखने के लक्ष्य से अमेरिका ने एक गठबंधन बनाने की सूचना दी थी। अब फ्रांस, स्पेन और इटली जैसे यूरोपीय देशों की ओर से इससे निकलने के फैसले से ये गठबंधन अब बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। साथी कायम रिजवी,
तीन यूरोपीय देशों के निकलने से अमेरिका के नेतृत्व वाला गठबंधन अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। लाल सागर से अवैध ज़ायोनी शासन की ओर जाने वाले जहाजों को यमनियों के हमलों से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अमेरिका ने एक गठबंधन बनाने की सूचना दी थी। अब फ्रांस, स्पेन और इटली जैसे यूरोपीय देशों की ओर से इससे निकलने के फैसले से यह गठबंधन अब बिखरता हुआ दिख रहा है। फ्रांस, स्पेन और इटली जैसे यूरोपीय देशों ने आधिकारिक रूप में अमेरिका की ओर से बनाए जाने वाले गठबंधन से अलग होने का ऐलान किया है। इन देशों ने इस गठबंधन को अपने युद्धपोत देने से भी इनकार कर दिया है। इन तीनों यूरोपीय देशों ने ऐलान किया है कि वे केवल संयुक्त राष्ट्र संघ, नेटो या फिर यूरोपीय संघ द्वारा बनाए गए गठबंधन में ही कार्रवाई कर सकते हैं, अमेरिका के साथ ऐसा नहीं कर सकते। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कानों तक ये बात पहुंचा दी गई थी कि कोई भी तुम्हारे बहुराष्ट्रीय टास्क फोर्स को महत्व नहीं दे रहा है। अब तीन यूरोपीय देशों की ओर से इस गठबंधन के साथ सहयोग न करने के फैसले ने इसके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। हालांकि कुछ समय पहले पेंटागन ने ऐलान किया था कि हम जो समुद्री गठबंधन बना रहे हैं उसमें 20 देश आ चुके हैं। उन्होंने देशों के नामों की घोषणा नहीं की थी। ऑस्ट्रेलिया तो पहले से ही इस गठबंधन में भाग लेने से इनकार कर चुका है। यमन की सेना ने गजा में फिलिस्तीनियों के प्रतिरोध का समर्थन करते हुए लाल सागर और बाबुल मंदब जल डमरू मध्य में ज़ायोनियों के कई जहाजों पर हमले किए। यमन की नौसेना ने ऐलान कर रखा है कि जब तक गजा पर ज़ायोनियों के पार्श्विक हमले रुक नहीं जाते उस समय तक वे ज़ायोनी हितों को लक्ष्य बनाते रहेंगे। अवैध ज़ायोनी शासन ने लाल सागर में अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए अमरीका से गुहार लगाई थी। इसी गुहार को सुनकर अमरीका ने एक समुद्री गठबंधन तैयार करने का फैसला किया जो अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। यमन की सर्वोच्च राजनीतिक परिषद के सदस्य मोहम्मद अली अलहूसी कह चुके हैं कि अमेरिका की ओर से बनाए जाने वाले समुद्री गठबंधन का उद्देश्य इसराइल की रक्षा करना है, न कि अंतर्राष्ट्रीय जहाजरानी की सुरक्षा करना। अलहूसी ने कहा है कि उनका देश अमेरिका के हर हमले का जवाब देने में सक्षम है। यमनियों के हमलों से इसराइल का वो व्यापार 90% से अधिक प्रभावित हुआ है जो समुद्री मार्ग से किया जाता है। अब नेटो के तीन सदस्य देशों की ओर से अमेरिका के समुद्री गठबंधन से निकलने का फैसला वाशिंगटन पर उनके अविश्वास को भी दर्शाता है। यमन के हमलों के बारे में एक टीकाकार का कहना है कि गजा पर हमलों के बाद अंसारुल्ला लाल सागर को अवैध ज़ायोनी शासन के विरुद्ध दबाव के एक हथकंडे के रूप में प्रयोग कर रहा है। इसी दबाव के कारण जहाजरानी की 50% से अधिक कंपनियां अपने मार्ग को परिवर्तित कर चुकी हैं। बहुत सी कंपनियों ने इसराइल के लिए सामान ले जाने में अक्षमता का प्रदर्शन किया है। ये काम ज़ायोनियों के लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो रहा है।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش، کاریکرم راجنیتک چرچا۔
طالبان سرکار کے ودیش منتری امیر خان متقی کی تہران یاترا طالبان کو انتراشٹریہ سمیلنوں میں شامل کرنے کے اسلامی گنتنتر ایران کے پریاسوں کو درشاتی ہے کہ یہ گروپ اسلامی جگت سے جڑے سب سے مہتوپورن مدوں پر اپنے وچار ویکت کر سکے۔ افغان ودیش منترالے کے پروکتا ضیا احمد تکل کے انوسار ودیش منتری امیر خان متقی نے ایران کے ودیش معاملوں کے منتری حسین امیر عبداللہیان کے نمنترن پر فلسطین کے سمبندھ میں ہونے والے ایک اچ استریہ راجنیتی کے صلاح کار سمیلن میں بھاگ لینے کے لیے ایک پرتندھی منڈل کے ساتھ تہران کی یاترا پر ہیں۔ ساتھی اختر عباس۔
افغان طالبان سرکار کے ودیش منتری امیر خان متقی کی تہران یاترا طالبان کو انتراشٹریہ سمیلنوں میں شامل کرنے کے اسلامی گڑتنتر ایران کے پریاس کو درشاتی ہے تاکہ یہ گروپ اسلامی جگت سے جڑے سب سے مہتوپورن مدوں پر اپنے وچار ویکت کر سکے۔ افغان ودیش منترالے کے پروکتا ضیا احمد تکل کے انوسار ودیش منتری امیر خان متقی نے ایران کے ودیش منتری حسین امیر عبداللہیان کے نمنترن پر فلسطین کے سمبندھ میں ہونے والی ایک اچ استریہ راجنیتک سمیلن میں بھاگ لینے کے لیے ایک پرتندھی منڈل کے ساتھ تہران کی یاترا کی۔ طالبان نے غزہ میں ذہنی شاسن کے اپرادھوں کے سمبندھ میں ایک اچھا رخ اپنایا ہے اور یہ ظاہر کیا ہے کہ اسلامی جگت کے سب سے مہتوپورن مدوں میں سے ایک پر اس کا سکریہ نظریہ ہے اور وہ غزہ کی جنتا کے ساتھ دوسرے مسلم دیشوں کے خلاف زائنی اپرادھوں کی کڑی نندہ کرتا ہے۔ راجنیتک مدوں کے وشیشجھ امین فرزاد کہتے ہیں کہ جیسا کہ پاکستان کے راشٹرپتی نے حال ہی میں زور دیا تھا کہ فلسطینی مدے کے سمبندھ میں اسلامی جگت میں ایران کی نیتروتو کی بھومکا ہے اور فلسطین کے بارے میں تہران بیٹھک میں طالبان کے ودیش منتری کا نمنترن بھی زائنی شاسن کے خلاف اسلامی جگت کی شمتاؤں کو بڑھانے کے تہران کے پریاسوں کو درشاتا ہے۔ فلسطینی جنتا کے سمبندھ میں اور ان کی شیتری اور انتراشٹریہ سرکشا سنشچت کرنے کے لیے تہران میں وبھن دیشوں کے ادھیکاریوں کی اپستھتی کے ساتھ تہران کے ودیش منترالے کی پہل پر فلسطینی سمیلن کا آیوجن درشاتا ہے کہ ایران فلسطینی جنتا کی امنگوں کا پرزور سمرتھن کرتا ہے۔ اس بیچ تتھا کتھت مانو ادھیکاروں کی رکشا کے دعوے دار زائونیوں کے اپرادھوں پر پوری طرح سے چپ ہیں اور غزہ میں سنگھرش ورام کے پرستاووں کو ویٹو کر رہے ہیں۔ اسی لیے غزہ میں زائونی اپرادھوں کے ورودھ اسلامی جگت طاقت اور ایکتا کو مضبوط کرنا آوشک ہے اور اسلامی گڑتنتر ایران کے پریاسوں سے یہ پرکریا اور بھی مضبوط ہو رہی ہے۔ اس بیچ طالبان 2.5 سال سے ادھک سمے سے افغانستان کی ستا میں لوٹ آیا ہے، حالانکہ اس کی سرکار کو انتراشٹریہ استر پر سویکار نہیں کیا گیا اور نہ ہی مانیتا ملی ہے، لیکن اسلامی دنیا کے سدسیہ کے روپ میں وہ اپنا رخ بیان کر سکتا ہے اور اس کا رخ غزہ میں اپرادھوں کے خلاف اسلامی دنیا کی ایکجٹتا کو مضبوط کرنے میں مدد کرتا ہے۔ راجنیتک مدوں کے وشیشجھ سید عیسیٰ مزاری کہتے ہیں کہ اگر اسلامی جگت ایکجٹ ہو جائے تو یہ انتراشٹریہ کھیتر میں شکتی کا ایک مہتوپورن اور پربھاوشالی دھروو بن سکتا ہے۔ اسی لیے اسلامی گڑتنتر ایران کے پاس بیت المقدس کی دھروی کے ساتھ مسلم دنیا سے سمبندھت سبھی تتوں کو اکٹھا کرنے کا پربھاؤ ہے اور اس ایکجٹتا سے غزہ کے معاملے کو پربھاوت کرنے کی شکتی ملے گی۔ اسی لیے تہران میں فلسطینی بیٹھک میں طالبان سرکار کے ودیش منتری کی موجودگی کو اہم مانا جا رہا ہے۔
اتری کشمیر کے بارہ مولا چھیتر میں اگیات بندوق دھاریوں نے ایک پورو پولیس ایس پی پر گولیوں کی بوچھار کر دی، جس سے گھٹنا استھل پر ہی اس کی موت ہو گئی۔ اس گھٹنا کے بعد سرکشا بلوں نے پورے چھیتر کا پریوشن کر کے تلاشی ابھیان آرمب کر دیا۔
اتری کشمیر کے بارہ مولا میں اگیات بندوق دھاریوں، جن کے بارے میں پرشاسن کا کہنا ہے کہ وہ الگاوادی چھاپہ مار تھے، ایک سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس جو ریٹائرڈ تھے اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی، جس میں وہ موقع پر ہی ہتاہت ہوا، جس کی پہچان محمد شفیع میر کے بطور ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ ریٹائرڈ ایس پی ایک مسجد میں آزان دے رہا تھا کہ اس پر آگیات بندوق داریوں، جس کے بارے میں پرشاسن کا کہنا ہے کہ وہ الگاؤں وادی چھاپہ مار تھے، اندھا دھند گولیاں چلائی، جس کے فلسروپ وہ گمبھیر روپ سے گائل ہوا اور زخموں کی تاب نہ لا کر ہتاہت ہوا۔ اس گھٹنا کے ترنت بعد سرکشا کرمیوں نے پورے چھیتر کا گراو کیا اور تلاشی ابھیان آرمبھ کیا، پرنتو ابھی کسی کی گرفتاری کی کوئی سوچنا نہیں ہے۔ تمام مین اسٹریم دلوں نے اس ہتیا کی نندا کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک طرف پرشاسن یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہاں پر ہنسا اب سماپت ہوئی ہے، پرنتو جو گھٹنائیں پچھلے کئی دنوں سے ہوئی ہیں اس سے یہ بات سدھ ہو گئی ہے کہ یہاں پر سب کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے۔ پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس نے اپنے ایک الگ الگ وکتویو میں کہا کہ جموں پرانت میں جو گھٹنا گھٹی جس میں 4 سرکشا کرمی ہتاہت اور اس کے بعد کتھت روپ سے 3 لوگوں کی ہتیا کر دی گئی، اور اب ایک ریٹائرڈ ایس پی کی ہتیا سے یہ بات سدھ ہو گئی ہے کہ یہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے۔ وکتوی جاری کرنا الگ بات ہے، پرنتو جو استھتی ہے وہ انتہائی گمبھیر ہے۔ پرشاسن نے ایک بار پھر تمام مین اسٹریم دلوں پر بل دیا کہ وہ ان وشیوں پر راجنیتی کرنے کے بجائے پرشاسن کا ساتھ دے۔ اس بیچ جموں پرانت میں رونگائی مسلمانوں کے ویرودھ جو آپریشن آرمبھ کر دیا گیا، جس میں کئی درجن لوگوں کی گرفتاری عمل میں لائی گئی اور انہیں اب واپس کیا جا رہا ہے، پر پرشاسن اور جموں کشمیر پولیس کے بھوتپور ادھیکش ایس پی وید نے کہا کہ قانون کا یہی تقاضا ہے کہ جو بھی امیگرینٹس قانون کے بغیر بھارت میں رہتے ہیں انہیں واپس جانا ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جو گھٹنا گھٹی ہے اس کا میں سمرتھن کرتا ہوں اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر انلیگل کوئی بھی رہنا نہیں چاہیے۔ اس اوسر پر ایس پی وید نے پترکاروں کے ساتھ وارتا کرتے ہوئے کہا،
پولیٹیکل پارٹیز اپنا اپنا بولتے رہتے ہیں لیکن قانون سب کے لیے برابر ہے، وہ قانون کوئی پالیٹکس نہیں مانتا ہے۔ اس میں کاربائی جو ایلیگل امیگرینٹ ہے وہ چاہے جو مرضی پولیٹیکل پارٹی اس کو سپورٹ کرتی ہو وہ ایلیگل ہے، جب تک وہ پراپر ڈاکومنٹس کے ساتھ انڈین نہیں ہو جاتا، تو اس کو پش بیک کرنا ہی قانونی کاروائی ہے۔ اور وہ
سپتے محمد حسن، ریڈیو تہران، سری نگر۔
تو شروع سپتے محمد حسن کی اسی رپورٹ کے ساتھ راجنیتک چرچا کا دینک کاریکرم یہیں پر سماپت ہوا۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ شروتا، آپ نے سنا کاریکرم راجنیتک چرچا، اور اب پرستت ہے ہمارا ساپتاہک کاریکرم قرآن ایشوری چمتکار۔
قرآن ایشوری چمتکار۔
پریہ شروتاؤں، کارکرم قرآن ایشوری چمتکار کی ایک انیہ کڑی لے کر آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں، آشا ہے پسند کریں گے۔ آئیے پہلے سورہ نور کی آیت کرمانک 35 کی تلاوت سنیں۔
اللہ نور السماوات والارض، مثل نوره کمشکات فیہا مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
ईश्वर आकाशों और धरती का प्रकाश है। उसके प्रकाश की उपमा ऐसी है जैसे एक ताक है जिसमें एक चिराग है। वो चिराग एक फानूस में है। वो फानूस ऐसा है मानो चमकता हुआ कोई तारा है। वो चिराग जैतून के एक बरकत वाले वृक्ष के तेल से जलाया जाता है जो न पूर्वी है न पश्चिमी। उसका तेल इतना शुद्ध है कि निकट है कि अपने आप जल पड़े, यद्यपि आग उसे छुए भी नहीं। एक प्रकाश पर दूसरा प्रकाश। ईश्वर जिसे चाहता है अपने प्रकाश से मार्ग दिखा देता है। ईश्वर लोगों के लिए उपमाएं प्रस्तुत करता है और ईश्वर तो हर चीज का ज्ञान रखता है।
यह आयत जो आयत नूर के नाम से विख्यात है और इस सूरे का नाम सूरह नूर रखे जाने का एक कारण है, ईश्वर को सृष्टि और जीवन का स्रोत और प्रकाश बताती है। इस आयत में ईश्वर की उपमा प्रकाश से दी गई है। मनुष्य जिन भौतिक वस्तुओं को पहचानता है और जो उसके लिए समझने योग्य हैं, उनमें प्रकाश सबसे उत्कृष्ट है और सभी सौंदर्यों का स्रोत है।
प्रकाश हर प्रकार की अच्छाई का स्रोत है और उसकी ओर से कोई बुराई या हानि नहीं होती। सभी वनस्पतियों, पशुओं और मनुष्यों का जीवन सूर्य के प्रकाश पर निर्भर है और प्रकाश के बिना जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। प्रकाश स्वयं भी उज्ज्वल होता है और अन्य वस्तुओं को भी प्रज्वलित करता है। ईश्वर स्वयं भी प्रकाश है और सभी रचनाओं एवं संपूर्ण सृष्टि के अस्तित्व में आने का कारण भी है।
ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है और सृष्टि उसी के कारण अपने स्थान पर बाकी है। इसके अतिरिक्त ईश्वर आकाश, धरती और सभी रचनाओं का मार्गदर्शक भी है। जैसा कि सूरह ताहा की 50वीं आयत में कहा गया है कि ईश्वर ने हर वस्तु की रचना की और फिर उसका मार्गदर्शन किया।
आगे चलकर आयत ईश्वरीय मार्गदर्शन को एक प्रकाशमान दीपक की उपमा देती है जो हर घर में प्रकाश फैलाता है और घर वालों को अंधकार से सुरक्षित रखता है। वो दीपक भी ऐसा है जो उचित स्थान पर रखा हुआ है और शीशे के फानूस के भीतर होने के कारण उसे बुझने का भी कोई भय नहीं है। उस दीपक का ईंधन एक शुद्ध तेल है। स्पष्ट है कि इस प्रकार के दीपक का प्रकाश बहुत अधिक होगा। वो सदा प्रकाशमान रहेगा और कभी भी बुझेगा नहीं। जी हाँ, ईश्वरीय मार्गदर्शन की जो आसमानी किताबों, पैगंबरों और ईश्वर के विशेष संदेश वही द्वारा मनुष्य तक पहुंचता है और ईमान वालों के हृदय में समा जाता है, सदैव उन्हें प्रकाश देता रहेगा और उन्हें अत्याचार व ज्ञान के अंधकारों से बाहर निकालता रहेगा।
इस आयत से हमने सीखा कि सृष्टि ईश्वरीय प्रकाश का एक प्रतिबिंबन है जो इस भौतिक संसार में दिखाई पड़ता है।
ईश्वरीय मार्गदर्शन आकाश और धरती को भी एक निर्धारित मंजिल की ओर बढ़ा रहा है और मनुष्य को भी वांछित परिपूर्णता की ओर ले जा रहा है।
सच्चे ईमान का पोषण उस मार्गदर्शन से होता है जो उसे सीधे रास्ते पर ले जाता है और हर प्रकार की पथ भ्रष्टता से सुरक्षित रखता है।
آئیے اب سورہ نور کی آیت کرمانگ 36 کی تلاوت سنیں۔
فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ یسبح له فیہ بالغدو والآصال۔
مارگ درشن کا یہ پرکاش ان گھروں میں ہے جنہیں اونچا کرنے اور جن میں اپنے نام کے صبح شام یاد کرنے کی ایشور نے انمتی دی ہے۔
इससे पहले की आयत में ईश्वरीय मार्गदर्शन व प्रकाश की बात की गई थी। ये आयत कहती है कि धरती पर ईश्वरीय मार्गदर्शन के दीपक उन घरों में जल रहे हैं और दूसरों को प्रकाश प्रदान कर रहे हैं जिनमें रहने वाले नमाज पढ़ते हैं और ईश्वर को याद करते हैं। ये ऐसे घर हैं जिन्हें ईश्वर ने दूसरे घरों से उच्च बनाया है और ईमान वालों के बीच भी उनका स्थान उच्च होना चाहिए।
स्पष्ट है कि मक्का नगर में स्थित काबे और संसार की सभी मस्जिदों एवं अन्य धार्मिक स्थानों को इसी प्रकार की विशेषता प्राप्त है और लोगों को ईश्वरीय मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए इन्हीं स्थानों की ओर जाना चाहिए।
इस आयत से हमने सीखा कि मस्जिदों को अन्य घरों की तुलना में विशिष्ट और हर प्रकार से बेहतर होना चाहिए।
ईश्वर की याद जिस घर में भी होती है उस घर का मूल्य बढ़ जाता है और वो घर अन्य घरों से अलग हो जाता है।
आइए अब सूरह नूर की आयत क्रमांक 37 और 38 की तिलावत सुने।
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ।
वे पुरुष जिन्हें व्यापार और क्रय विक्रय ईश्वर की याद नमाज कायम करने और जकात देने से निश्चेत नहीं करता, वे उस दिन से डरते रहते हैं जिसमें हृदय और आंखें पलट जाएंगी, ताकि ईश्वर उन्हें उनके अच्छे से अच्छे कर्मों का बदला प्रदान करे और अपने उदार अनुग्रह से उन्हें और अधिक प्रदान करे, और ईश्वर जिसे चाहता है बेहिसाब प्रदान करता है।
ईश्वरीय मार्गदर्शन से लाभान्वित होने वाले लोग अपनी भौतिक एवं सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास करते हैं और काम व व्यापार करते हैं, किंतु ये चीजें उन्हें आध्यात्मिक कार्यों व धार्मिक दायित्वों के पालन से नहीं रोकती और वे सदैव अपने अंजाम के बारे में विचार करते हैं। वे इस बात पर ध्यान रखते हैं कि उन्हें ईश्वरीय न्यायालय में उपस्थित होना और अपने कर्मों का जवाब देना है। यही बात एक मजबूत कारक के रूप में ईमान वालों को बुराइयों से रोकती है और अच्छे व भले कर्मों की ओर उन्मुख करती है।
अलबत्ता ईश्वर भले लोगों के साथ दया व कृपा का, जबकि बुरे कर्म करने वालों के साथ न्याय का व्यवहार करता है। वो सत्कर्मों का कई गुना और कभी कभी तो 700 गुना पारितोषिक देता है, किंतु बुरे कर्म का उसकी बुराई के अनुपात में दंड देता है।
भले कर्म करने वाले बंदों पर ईश्वर की कृपा यह है कि वो उनके कर्मों की कमी की भरपाई करके उन्हें कर्म का पूरा बदला देता है। इसके अतिरिक्त प्रलय में उसने उनके पारितोषिक को अत्यंत व्यापक व अपेक्षा से कहीं अधिक रखा है और वो उन्हें इतना प्रदान कर देगा कि संसार के अनुसार उसका हिसाब नहीं किया जा सकेगा।
पैगंबर व उनके परिजनों के कथनों के अनुसार ईश्वर के अच्छे बंदे जब भी अजान की आवाज सुनते हैं तो जो भी काम वे कर रहे होते हैं उसे छोड़कर नमाज की ओर चले जाते हैं। नमाज पढ़ते समय ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी बात उन्हें अपनी ओर आकर्षित नहीं करती।
इन आयतों से हमने सीखा कि धन दौलत और भौतिक मामलों का आकर्षण इतना अधिक है कि यदि मनुष्य ध्यान न दे तो वे उसे ईश्वर की याद से रोक देते हैं।
वही व्यापार मूल्यवान है जो ईश्वर की याद, नमाज और जकात के साथ हो। ईश्वर के प्रिय बंदे अपने भौतिक जीवन के लिए प्रयत्न करते हैं, किंतु वे प्रलय की ओर से भी निश्चेत नहीं रहते। दूसरे शब्दों में ईश्वर की याद को छोड़कर किया जाने वाला व्यापार मूल्यहीन व पतन का कारण है। वस्तुतः ये नमाज और ईश्वर की याद है जो व्यापार में बरकत लाती है और समाज की प्रगति का कारण बनती है।
प्रलय में हर चीज पलट जाएगी। जो वस्तु संसार में बहुत मूल्यवान प्रतीत होती थी वो मूल्यहीन हो जाएगी और जो वस्तु संसार में मूल्यहीन लगती थी वो मूल्यवान हो जाएगी।
जो लोग ईश्वर के लिए व्यापार के लाभ से आंखें मूंद लेते हैं, ईश्वर उन्हें बेहिसाब लाभ प्रदान करता है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, आपने सुना कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार और अब प्रस्तुत है सभा का अंतिम कार्यक्रम आजकल।
आजकल
दोस्तों, कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम अफगानिस्तान में फारसी भाषा के विरोध के विषय पर चर्चा करेंगे। मरियम मेहरदादी और अहमद अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
अफगानिस्तान लंबे समय से विभिन्न जातीय समूहों के लिए एक क्रॉसिंग प्वाइंट और मिलन स्थल रहा है। इस जमीन पर नस्लीय जातीय संगठनों के जमावड़े ने इसकी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संरचना को एक विशेष आकार प्रदान कर दिया। ये जातीय समूह अक्सर आर्य भाषाएं और बोलियां बोलती थीं और अल्पसंख्यक तुर्की, मंगोलियाई, द्रविड़ भाषाएं और सेमिटिक भाषाएं भी बोली जाती थीं। अफगान जनता की दो मुख्य भाषाएं फारसी दरी और पश्तो हैं और दोनों ही भाषाएं इंडो यूरोपीय परिवार की इंडो ईरानी शाखा से संबंधित हैं और आर्य भाषाओं का एक उपसमूह है। ये दोनों भाषाएं अफगान संविधान में आधिकारिक भाषाओं के रूप में स्वीकार की जाती हैं।
अफगानिस्तान का मेधावी वर्ग फारसी और पश्तो दोनों भाषाओं का उपयोग करता है और ये वर्ग फारसी को सांस्कृतिक शिक्षा और विकास का प्रतीक मानता है। अफगानिस्तान के आधिकारिक सरकारी लेखों में फारसी भाषा को दरी भाषा कहा जाता है, लेकिन अफगान जनता अपनी आम बोलचाल की भाषा को फारसी के नाम से जानती है।
ईरान की तरह अफगानिस्तान में फारसी भाषा फारसी वर्णमाला से लिखी जाती है जिसमें 32 अक्षर होते हैं। अफगानिस्तान में आधिकारिक फारसी लिपि ईरान की फारसी लिपि से थोड़ी सी भिन्न है। इस हस्तलेखन की व्यवस्था वर्षों पहले अफगानिस्तान के संस्कृति मंत्रालय में की गई थी और इसका पालन करते हुए जिंदगी जैसे शब्दों को जिंदगी के रूप में लिखा गया है।
लोगों के बीच फारसी भाषा की समृद्धि के बावजूद कई दशकों के युद्ध और सामाजिक व राजनीतिक अशांति के कारण साक्षरता और सामान्य ज्ञान की कमजोरी अफगानिस्तान की बाहरी दुनिया, विशेष रूप से अंग्रेजी भाषी दुनिया के साथ अचानक और व्यापक टकराव का कारण बनी, क्योंकि विभिन्न उच्च संस्थानों में अंग्रेजी का उपयोग होता है और सरकार संस्थागत रूप से इस पर ध्यान नहीं देती।
पिछले कुछ दशकों के दौरान अफगानिस्तान में फारसी भाषा को जो नुकसान हुआ उनमें फारसी की तुलना में अफगानिस्तान की भाषा पश्तो भी शामिल है, लेकिन अफगानिस्तान के फारसी भाषियों को जिस नई पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है वो तालिबान का प्रभुत्व है, जिसने झूठे बहानों के तहत लोगों की भाषा सहित उनके जीवन पर हमला किया है और उनके जीवन को नरक बनाकर रख दिया है।
तालिबान की फारसी विरोधी कार्रवाइयों में से एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को दिए गए आदेश हैं। कुछ समय पहले तालिबान के उच्च शिक्षा मंत्रालय ने एक आदेश जारी करके अफगान विश्वविद्यालयों के सभी प्रोफेसरों और अकादमिक कर्मचारियों को अन्य भाषा के शब्दों और वाक्यों का उपयोग न करने का आदेश दिया था। इस आदेश में 7 अनुच्छेद हैं जो वैज्ञानिक कार्यों, शोधों, संकलनों और अनुवादों में अदालत, अभियोजक, छात्र, विश्वविद्यालय और संकायों जैसे शब्दों के उपयोग पर रोक लगाते हैं। साथ ही अफगान विश्वविद्यालयों के सभी प्रोफेसरों और संकाय को अफगानिस्तान की दोनों आधिकारिक भाषाओं पश्तो और फारसी में महारत हासिल करना और पढ़ना आवश्यक है।
ये पहली बार है कि अफगान विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को फारसी और पश्तो दोनों भाषाओं में पढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि अफगान उच्च शिक्षा कानून में विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों को देश की आधिकारिक भाषाओं में पढ़ाने की अनुमति है और अभी तक दोनों भाषाओं में पढ़ाने की कोई बाध्यता नहीं थी।
इस प्रकार विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उन अधिकांश क्षेत्रों में फारसी भाषा में पढ़ाते थे जहाँ के निवासी फारसी भाषी थे और उन क्षेत्रों में पश्तो भाषा में पढ़ाते थे जहाँ के निवासी पश्तो भाषी थे। कई अफगान नागरिकों ने इस सर्कुलर के जारी होने को तालिबान गुट की फारसी विरोधी नीति का जारी रहना करार दिया है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि ऐसी नीति न तो पश्तो भाषा को मजबूत करेगी और न ही फारसी भाषा को कमजोर करेगी। इससे पहले तालिबान ने उन प्रांतों में कई विश्वविद्यालयों के साइन बोर्ड को पश्तो में बदल दिया था जहाँ के निवासी ज्यादातर फारसी भाषी थे। اس کے ساتھ ہی سرکاری دفتروں کے بورڈوں سے فارسی بھاشا ہٹا دی گئی اور اس کی جگہ پشتو اور انگریزی والے بورڈ لگا دیے گئے۔
ان کارروائیوں پر کویوں، سنسکرتی ودوں، پترکاروں اور لیکھکوں سہت افغان ناگرکوں کی اور سے ویاپک پرتکریا ہوئی۔ حالانکہ طالبان یوا منترالے کے ڈپٹی محمد یونس رشید نے اس سال اگست کی شروعات میں بامیان کے یواؤں کے ساتھ ایک بیٹھک میں کہا تھا کہ افغانستان کو فارسی ساہتیہ کی آوشیکتا نہیں ہے اور ہمارے لیے فارسی بھاشا اور ساہتیہ سیکھنا آوشیک نہیں ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یواؤں کو ایسے وشے اور پیشے سیکھنے چاہیے جن کے ذریعے ہم انت یدھ اپکرن تیار کر سکیں۔ انہوں نے وشودیالوں میں فارسی ساہتیہ کی پڑھائی کو مہتوہین مدعا بتایا تھا۔
طالبان نے فارسی بھاشا کو کیوں ہٹایا؟ اس بارے میں فارسی ساہتیہ کے کھیتر میں سکری ایک شوھ کرتا ڈاکٹر نصیر آریان کہتے ہیں کہ فارسی بھاشا کو ہٹانے کا مدعا ایک ایتہاسک مدعا ہے جو کئی لوگوں کے لیے جاتیہ پروچن، افغان واد اور اسلام واد کے کیندر میں رہا ہے۔ ورشوں سے اور طالبان کے سمے میں فارسی بھاشا کے پرتی شتروتا پورن اور نراشوادی درشٹی کون میں کیول وردھی ہی ہوئی ہے۔
اس درشٹی کون کے پرورتکوں نے چاہے وہ طالبان ہو یا کوئی انیہ گٹ، حالیہ ورشوں کے دوران فارسی بھاشا اور سنسکرتی کے خلاف ایک رنیتک اور ایتہاسک ایجنڈا اپنا رکھا ہے۔ اس سوال کے جواب میں کہ پورے اتہاس میں سرکاریں اور اب طالبان فارسی بھاشا کو ختم کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم امان اللہ خان کے سمے میں اس مدعے کے ایتہاسک آدھار کی اور اشارہ کر سکتے ہیں۔
اس سمے محمود طرزی جیسے کسی ویکتی کو سرکار میں اپنے قریبی رشتوں کے آدھار پر اپنے ویکتیگت وچاروں اور لکشوں کو آگے بڑھانے کا اوسر اور شکتی ملے گی۔ اس سمے محمود طرزی اور ان کے سہیوگیوں نے سوچا کہ ایران، افغانستان اور تاجکستان تین دیش ہیں جو فارسی سنسکرتی اور بھاشا کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ بھاشا ان تین دیشوں کی آبادی اور لوگوں کے بیچ ایک پرکار کا سنچار پیدا کرتی ہے۔ اسی لیے انہوں نے افغانستان کے لیے ایک پوری طرح سے الگ سنسکرتی، بھاشا اور سانسکرتک کاریوں کو پریبھاشت کرنے اور افغانستان کو دنیا کے سامنے ایک ایسے دیش کے روپ میں پیش کرنے کی مانگ کی جس کا پرانے ایران اور فارسی بھاشا سنسکرتی سے کوئی ایتہاسک سمبند نہ ہو۔
یہ درشٹی کون اس سمے سامنے آیا اور آج تک فارسی وادی شکتی اس درشٹی کون کو یتھا سمبھو وستارت کرنے اور دنیا کے سامنے یہ دکھاوا کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ افغانستان افغانوں کی بھومی ہے، اس کی ایک افغان سنسکرتی ہے، ایک افغان بھاشا ہے اور ایتہاسک اور سانسکرتک روپ سے اس کا پرانے ایران اور فارسی بھاشا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسی لیے پورے اتہاس کے دوران وہ سوئم ہی عجیب و غریب شبد بناتے اور گڑھتے ہیں اور انہیں فارسی بھاشا کے شدھ شبدوں کے ساتھ زبردستی گھسانے کا پریاس کرتے ہیں۔
پچھلے 20 ورشوں کے دوران افغان جنتا کی جاتیتا اور نسل کا مدعا پھر سے اٹھایا گیا اور بھاشا کا مدعا پھر سے گرمایا گیا۔ ادھارن کے لیے راشٹرگان بناتے سمے کچھ لوگوں کا زور تھا کہ یہ پشتو بھاشا میں ہو، جبکہ پشتو اور فارسی دونوں بھاشاؤں کو سمویدھان میں مانیتا دی گئی تھی۔ یہ بات تب زیادہ گرمائی جب پہچان پتر ڈیزائن کیا گیا اور لوگوں کی راشٹریتا افغان درج کی گئی، جبکہ افغانستان کے آدھے لوگ اور شاید اس سے بھی زیادہ خود کو افغان نہیں مانتے، کیونکہ افغان افغانستان کے جاتیہ سموہوں میں سے ایک ہیں۔ لیکن یہ کارروائی افغان جنتا کی پہچان بدلنے کی دشا میں کی گئی اور کبھی کبھی سڑکوں پر ویرودھ پردرشن ہوئے اور یہاں تک کہ پریس میں بھی ان کی چرچا ہوئی۔
उदाहरण स्वरूप जब उन्होंने मजार शरीफ में फारसी में लगे एक बोर्ड को हटाना चाहा तो लोगों ने विरोध किया, जिसके दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। लेकिन वर्तमान समय में तालिबान की पुनः स्थापना से हम एक प्रकार की सांस्कृतिक हिंसा का सामना कर रहे हैं। सरकार और राजनीति सत्ता एक जातीय समूह के हाथों में पहुंच गई है और ये जातीय समूह सांस्कृतिक दृष्टि से कोई शिक्षित समूह नहीं है और राजनीतिक दृष्टि से इसमें एक विशेष तरह की नाराजगी पाई जाती है। इस कारण से शहर के स्तर पर परिवर्तन के लिए ये शहर के साइन बोर्डों और प्रशासनिक पत्रों आदि के माध्यम से अत्यधिक एक पक्षवाद को बढ़ावा दे रहा है।
अंत में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख करना आवश्यक है। सबसे पहले, फारसी भाषा विज्ञान और कला की भाषा है और इस भाषा में कई शताब्दियों से मूल्यवान रचनाएं लिखी गई हैं और फारसी साहित्य के महान लोग पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इस कारण से इस भाषा और इसके कार्यों और प्रतीकों से निपटना अनुभवहीनता का प्रदर्शन है।
दूसरी बात जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए वो ये है कि अफगानिस्तान में फारसी भाषा की ताकत पश्तो भाषा के कमजोर होने का कारण नहीं है। दुनिया की एक जीवित भाषा के रूप में फारसी भाषा का उपयोग अफगानिस्तान की जनता द्वारा पश्तो भाषा के साथ किया जाता है और इनमें से किसी ने भी दूसरे की शक्ति को कम नहीं किया है।
तीसरी बात यह है कि भले ही फारसी भाषा को मजबूत इरादे करके हटा दिया जाए, क्योंकि पश्तो भाषा एक गैर वैज्ञानिक भाषा है, यह अफगानिस्तान की जनता को संतुष्ट नहीं कर सकती और लोग वैज्ञानिक ऐतिहासिक कामों के लिए फारसी भाषा का उपयोग करते हैं। इसीलिए फारसी भाषा पर पैसा खर्च करने के बजाय पश्तो भाषा को मजबूत करने और पश्तो भाषा में प्रामाणिक वैज्ञानिक स्रोतों का अनुवाद और उपयोग करने की सिफारिश की गई है।
आखिरी बात ये कि फारसी भाषा अफगानिस्तान के भूगोल में निहित है और इस देश के अंदर और बाहर अफगानिस्तान के मेधावी वर्ग को इस बारे में सोचना चाहिए कि वे सिनेमा, थिएटर और साहित्य जैसी कलाओं के साथ फारसी भाषा के विभिन्न पहलुओं को बार बार कैसे पुनः पेश कर सकते हैं। ऐसे मुद्दे का सबसे बड़ा उदाहरण महान फिरदौसी हैं। एक अशांत ऐतिहासिक काल में एक अद्वितीय कलाकार जिसने खतरे में पड़ी और आक्रमणकारियों के निशाने पर खड़ी फारसी भाषा को संरक्षित किया और उसे हम तक पहुँचाया।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। हमें अनुमति दें।